ओम शांति। आप सभी कितने महान हैं, कितने भाग्यवान हैं कि आपको सब कुछ भगवान के द्वारा मिलता है। दुनिया में मनुष्यों के द्वारा, चाहे गुरु हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे माँ बाप हैं, उनसे प्राप्त होता है, लेकिन ब्राह्मण बच्चों को सर्व प्राप्तियां भगवान के द्वारा है। तो कितने महान हैं। हमारा आप सबका लक्ष्य भी यही है कि भगवान से सब कुछ प्राप्त कर भगवान के समान संपन्न बन जाए। तो भगवान आया ही है हम आप आत्माओं को आप समान संपन्न बनाकर साथ घर ले जाने। तो संपन्न बनने की विशेष विधि तीन है। एक है चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर संपन्न बनना। दूसरा है सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां कर संपन्न बनना। और तीसरा है दुआओं का खाता जमा कर संपन्न बनना। तो आज आपको क्लियर करते हैं कि भगवान के द्वारा सर्व संबंधों के आधार से सर्व प्राप्तियां कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सहज विधि यही है। तो भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा है, मुरली में कहा था, अव्यक्त मुरली में, अगर भगवान के साथ सर्व संबंध नहीं है तो सर्व गुण संपन्न बन नहीं सकते। तो उसमें कई बच्चे कहते हैं कि बाबा तो बड़ा है, भगवान है, उसके साथ माता पिता टीचर गुरु का संबंध रखना तो ठीक है, लेकिन भगवान के साथ नाती पोत्रा धोत्रा या बहू ऐसा कोई संबंध रखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान बड़ा है। तो बाबा ने जवाब दिया था कि अगर कोई भी संबंध, चाहे पोत्रा धोत्रा भी, अगर भगवान के साथ संबंध नहीं रखा तो सर्व संबंध में सर्व शब्द कट जाएगा, सिर्फ संबंध बचेगा। और इसका रिजल्ट आप सर्व प्राप्ति संपन्न के बजाय सिर्फ प्राप्ति संपन्न बनेंगे, अर्थात सतयुग के बजाय आप त्रेता में स्वतः ही आ जाएंगे। इसलिए भगवान के साथ सर्व संबंध जोड़ना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर्व से सर्व प्राप्तियां हैं। कोई भी संबंध छोड़ो नहीं। जो संबंध आप नहीं जोड़ोगे अभी, अंत में विनाश के समय वही संबंध आपको खींचेगा अपनी तरफ, और आपका बुद्धि योग भगवान से विचलित हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। इसलिए सर्व संबंधों के द्वारा सर्व प्राप्तियां करो। सर्व संबंध में भी मुख्य रूप से चार संबंध अगर आप निभा लो तो चार संबंध में सर्व संबंध आ जाएंगे। वो चारों संबंध हैं बाप, टीचर, सतगुरु और साजन। बाप, टीचर, सतगुरु और साजन, ये चारों संबंध निभा लो तो इन चार संबंधों के द्वारा इतनी प्राप्ति है कि आत्मा भगवान के समान संपन्न बन जाएगी। अभी आपको बताते हैं मोटे रूप से क्या प्राप्ति है। आप भगवान के साथ संबंध जोड़ो तो बाप के रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, टीचर के रूप से दुआ मिलेगी, सतगुरु के रूप से वरदान मिलेगा और साजन के रूप से साथ मिलेगा। दूसरी बात, बाप के रूप से समझानी मिलती है, शिक्षक के रूप से शिक्षा मिलती है, सतगुरु के रूप से सदगति का राह मिलता है और साजन के रूप से प्यार मिलता है। इसके बाद बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से पद मिलता है, सतगुरु से गति सतगति मिलती है, और साजन से अति इंद्रिय सुख मिलता है। अब इन चारों को हमें राशि करना है और एक एक को राजी करने की विधि बाबा ने बताई है कि एक एक संबंध को आप कैसे राजी कर सकते हैं, क्योंकि जब हर एक संबंध से बाप को राजी करो तो बाप से जो प्राप्ति है वो मिलेगी। टीचर को राजी करो तो टीचर से जो प्राप्ति है वो मिलेगी। सिर्फ संबंध जोड़ने से प्राप्ति नहीं होगी। जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे थे या आपके घर के आसपास कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है, उसको आप पिताजी कहते हो या काका चाचा कुछ भी कहते हो, कहकर उसको सम्मान देते हो, क्या पिताजी कहने से वो आपको अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, मिल जाएगी? तो भगवान को बाबा बाबा कहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो लायक बनना पड़ेगा। जैसे हम किसी को पिताजी कहते हैं तो पिताजी कहने से प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के लायक बनना पड़ता है, अर्थात उसके घर में जन्म लेना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, तब प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसे हमें लायक बनना पड़ेगा। सिर्फ संबंध जोड़ने से कहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कहती तो सारी दुनिया भी है, सारी दुनिया गीत गाती है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा सब कुछ गाती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं, क्योंकि कनेक्शन जुड़ता नहीं। तो हमें लायक बनना है। लायक बनने के लिए अर्थात जो भगवान ने हम आप सबको लायक बनने की विधि बताई है, वो सारी विधि अपनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल जीवन में लाना पड़ेगा। जैसे देखो, बाप के रूप से बाप को राजी करने की विधि है, बाप के रूप से बाप को राजी करने की विधि है, बाप के आज्ञाकारी बनना, बाप के आज्ञाकारी बनना। अभी क्लियर करेंगे एक एक। टीचर के रूप से टीचर को राजी करने की विधि है ईमानदार बनना, टीचर के साथ ईमानदार रहना। सतगुरु को राजी करने की विधि है सतगुरु के फरमान बरदार बनना, सतगुरु के फरमान बरदार बनना। और साजन को राजी करने की विधि है क्या होगी? क्या समझते हैं? लौकिक दुनिया में देखो, पत्नी से साजन राजी रहे या साजन से पत्नी राजी रहे, एक दूसरे पे खुश रहे, उसकी विधि क्या है? आज उसी की कमी होने से खटपट होता है, वो है वफादार बन। वफादार बन। तो सतगुरु ने साजन को राजी करने की विधि है वफादार बन। तो पहला है बाप को राजी करने की विधि आज्ञाकारी बनना। अगर हम आज्ञाकारी बनते हैं तो बात है, एक है आज्ञाकारी कैसे बने, एक है आज्ञाकारी बनते हैं तो हमें क्या मिलेगा। अगर भगवान बाप के रूप से हमारे ऊपर राजी हो गया तो हमें क्या मिलेगा। तो पहली बात है कि बाप का आज्ञाकारी बनना। आज्ञाकारी उसे कहा जाता है जो भगवान के मुंह से निकला और उसी समय करने लग जाना। आप हम सब पूर्ण आज्ञाकारी नहीं हैं। आप कहेंगे मैं तो हूं, जरूर हो, लेकिन चेक करो, आज्ञाकारी अर्थात जो बाप ने आज्ञा दी करने लग जाना। अपने लिए बाप की आज्ञा किस आधार से आज्ञा देता है बाबा? मुरली, मुरली के आधार से, अपनी सारी मुरली बाप की आज्ञा है, श्रीमत है। तो आप चेक करो कि जो सुबह हमने मुरली सुनी, क्या जो बाबा ने मुरली में कहा, क्या उस मुरली के श्रीमत प्रमाण हमने सारी दिनचर्या चलाई? नहीं ना। अगर पूछा जाए, डायरी खोल के ना देखो तो मुरली की पॉइंट ही नहीं याद है। सोचो, अगर मुरली की पॉइंट ही नहीं याद है, इसका मतलब भगवान ने हमें क्या आज्ञा दी है करने के लिए वही नहीं याद है तो करने का सवाल क्या। अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो भगवान हमारे ऊपर राजी नहीं होगा। अगर राजी नहीं होगा तो नुकसान क्या है? हमें पुरुषार्थ में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ सहज नहीं होगा। अगर आप भगवान को राजी कर लो तो भगवान आशीर्वाद दे देता है और वो आशीर्वाद हमारे सारे विघ्न, परिस्थितियां या पुराने संस्कार, ये जो भी हैं, हमारे पुरुषार्थ में जो रुकावट बनते हैं उन सब को आशीर्वाद दबा देता है, ऊपर उठने नहीं देता है। अगर हम बाप का आशीर्वाद नहीं ले पाए तो ये विघ्न, संस्कार, परिस्थिति, हिसाब किताब ये बार बार हमारे आगे आते रहेंगे और हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ा नहीं पाएंगे। उदाहरण के रूप से जैसे देखो अपनी मम्मा थी, दादियां हैं आजकल, इतने थोड़े समय में मम्मा संपूर्ण कैसे बन गई? क्या मम्मा के सामने पुराने संस्कार नहीं थे? क्या मम्मा के सामने विघन परिस्थितियां नहीं थी? क्या मम्मा का शारीरिक कर्म भोग नहीं था? सब कुछ हम सबसे हजार गुना ज्यादा था, लेकिन बाप का आशीर्वाद इन सब को दबा देता है और इसके द्वारा आपका पुरुषार्थ बढ़ जाता है। उदाहरण के रूप से प्रेजेंट में देख लो, अपनी गुलजार दादी हैं, बीमार हैं, लेकिन दादी से पूछो कहाँ दर्द है, डॉक्टर पूछता है दादी कहाँ दर्द है, दादी कहती कहीं दर्द है ही नहीं, है बीमार दर्द है ही नहीं। जब दर्द ही नहीं तो पुरुषार्थ कितना बढ़ेगा, और जब दर्द की फीलिंग नहीं है, आत्मा बाबा की याद में लगी हुई है, ऐसी आत्मा से प्रतिपल सेवा बाबा कराता रहता है। उदाहरण के रूप से जब गुलजार दादी पहली बार बॉम्बे गई, बीमार थी, तो जब गई तो जिस डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, अशोक मेहता, जैसे उसने गुलजार दादी को देखा, गई थी ऑपरेशन कराने, बीमार थी, लेकिन जैसे दादी को देखा, दादी के द्वारा देवी का साक्षात्कार हो गया और उसने तुरंत घर में फोन किया अपने पत्नी को कि हॉस्पिटल में एक देवी आई है, आओ दर्शन करके जाओ। रिजल्ट ये हुआ, वो पूरा एशिया का सेकंड नंबर कैंसर का डॉक्टर है अशोक मेहता, कुछ जानते होंगे भाई बहने अपने। उसी दिन से वो ज्ञान में चल पड़ा और इतने बड़े डॉक्टर को बाबा का साक्षात्कार हो गया। तो बाप का आज्ञाकारी बनने के लिए चलो आपको पूरी मुरली नहीं याद रहती है, कोई बात नहीं, शायद किसी को भी ना याद रहती, लेकिन बाबा हम बच्चों के लिए कितना सरल कर दिया है कि पांच बातें तो याद रह सकती हैं। मुरली की सबसे पहले ऊपर हेडिंग होती है, फिर प्रश्न उत्तर होते हैं, तो फिर धारणा के लिए सार होता है, तीन, चौथा फिर वरदान होता है, और पांचवा स्लोगन होता है। तो पांच तो याद रह सकते हैं, पूरी मुरली नहीं याद रह सकती। अगर ये पांच भी याद रखो तो भी पूरी मुरली आ जाए। बाबा ने तो यहां तक सरल कर दिया। अच्छा, पांच नहीं याद रहता है वो भी छोड़ो, आप मुरली सुनते सुनते मुरली की एक पॉइंट ले लो कि आज मुझ आत्मा को ये पॉइंट धारण करना है, सिर्फ एक पॉइंट, और उस एक पॉइंट को आप जब तक सो तब तक उस पॉइंट पर आप मनन चिंतन पुरुषार्थ करते रहो एक ही पॉइंट पर। तो अगर एक पॉइंट पर किसी का 8-10 घंटा 12 घंटा अगर अटेंशन जाएगा तो क्या वो पॉइंट स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना। तो अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आई तो 30 दिन में 30 पॉइंट स्वरूप में आ जाएगी। संपूर्ण बनने में देर लगेगी नहीं। तो आज से ये अंदर से संकल्प लो कि जो कल मुरली सुनोगे उस मुरली से एक पॉइंट कोई भी ले लो और उस एक पॉइंट पर आप सारा दिन मनन अटेंशन पुरुषार्थ प्रैक्टिस चिंतन किसी से रूरियान उसी एक पॉइंट पर करते रहो। यहां कर सकते हो, करके देखो, आप भगवान के आज्ञाकारी भी बन जाएंगे और आपको सहज ज्ञान की धारणा भी होने देंगे। अगर आज्ञाकारी बनो, बाबा के सच्चे बच्चे बन जाओ, सपूत बच्चे बन जाओ, तो कोई भी जो चाहे वो बाबा से करा सकते हो। बाबा बांधाए मान है, बाप है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, किसी भी चीज की। मान लो आपको धन की आवश्यकता है, लालच नहीं, आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, आप बाप के सपूत बच्चे बन जाओ, पैसा बाबा देगा। कहां से देगा, कैसे देगा वो बाबा जाने, लेकिन देगा। अब हम एक उदाहरण देते किस रूप से वो देता है। एक भगवान प्रकृति का पति है, मालिक है। तो अगर आपने प्रकृति के पति को राजी कर लिया है तो जहां प्रकृति का पति होगा प्रकृति कहां जाएगी? अपने मालिक के पास ही जाएगी ना। और मालिक आपके पास है, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। दूसरी बात, आप 84 जन्म लिए हैं, आपका किस जन्म का कहां का क्या खाता है आप नहीं जानते हो, बाप जानता है। और वो आपका खाता आपका बाबा दिलाएगा। उदाहरण के रूप से कहानी बताता हूं, अपने यज्ञ की बात है ये, जब बाबा अव्यक्त हुआ तब की बात है। एक गुजरात में एक पास में सेंटर है, यहां से थोड़ी दूर पर है नडियाद, एक सेंटर है आनंद, वहां एक बहन रहती थी, सिंधी थी, उसको सब छुग्गी दादी कहते थे, शरीर छोड़ दिया है। तो उस समय वो पहले जहां रहती थी सेंटर का नाम आनंद था, तो 5-6 स्टूडेंट सिर्फ थे, शुरू शुरू में खोला था। और उस समय ये मेला का जो प्रोग्राम होता है वो शुरू हुआ था, तो उसके मन में विचार आया कि अगर मेला हो जाए तो काफी स्टूडेंट निकल आएंगे, बाबा की सेवा हो जाएगी। उसने आकर के प्रकाश मणि दादी को बताया कि दादी मेरा विचार है मेला करने का, आप छुट्टी दो। तो दादी ने कहा कितना है हाथ में अभी, मेला करने में तो थोड़ा खर्चा लगेगा। तो उसने बताया दादी 10,000 है सर। और उस समय मेला में कम से कम 50-60,000, उस समय आज तो 10-15 लाख जाता है, 50-60,000 कम से कम जाता। तो दादी ने कहा भी छोगी तुम 1-2 साल और रुक जाओ, थोड़ा कुछ और हाथ में आ जाने दो, फिर मेला करना। ये तो चली गई यहाँ, लेकिन सेंटर पे जाके सुबह रोज योग में बाबा से लड़ती थी, बाबा आप कहते हो मैं बच्चे की हर आस पूरी करता हूँ, जो बाबा जो सपूत बच्चे उनका हर एक मनोकामना पूरी करता हूँ, बाबा आप मुझे मेला करना है, मुझे 40,000 रुपए चाहिए, मुझे मेला करना है, मुझे 40,000 रुपए चाहिए। ऐसे रोज सुबह योग में बाबा से रूरियान करती थी, लड़ती थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक भाई आया और ये छुग्गी दादी अपना जो सेंटर खुला था वहीं बैठी थी, करीब दिन के 10-10:30 बजा होगा। तो उसने आते ही सबसे पहले गेट पर एक प्रश्न किया उससे कि क्या आपका नाम लक्ष्मी है क्या, का पहले का नाम लक्ष्मी था। तो चुप रहे, कुछ बोला नहीं। फिर दूसरा प्रश्न किया कि आपकी इतना बरस पहले शादी हुई थी क्या, और बात सच्ची है। तो छुग्गी दादी ने कहा तुमको इन बातों से क्या मतलब है, तुम यहाँ आओ, बाबा का चित्र देखो, ज्ञान समझो, क्या इन सब बातों से क्या मतलब है। उसने फिर तीसरा प्रश्न किया तुरंत कि आपको उस समय दहेज में कितने पैसे मिले थे। तो दादी के मुंह से निकला मुझे कुछ पता नहीं। तो बोला ठीक है मैं बताता हूं, तुमको दहेज में 40,000 रुपए मिले थे। तो क्या होता है उस समय सिंधी लोग पैसे आजकल तो जो देते हैं वो दिखाते हैं, उस समय गुप्त दान देते थे। तो उन्होंने एक बॉक्स में उठा करके उसके पति को दे दिया था, इसको भी नहीं पता था, उसके पति को दे दिया था। तो जो भाई आया था वो उनके पति का दोस्त था और इसको बहुत बड़ा बिजनेस में घाटा लग गया था। तो उसके पति ने इसको पैसा दे दिया था, ये छुग्गी दादी को भी नहीं पता है। और बीच में पति ने शरीर छोड़ दिया, तो किसी को भी पता नहीं था कि पैसा कहीं कुछ दिया हुआ है। तो उसने कहा 40,000 रुपया था, दिया था, और वो मैं आपको देने आया हूं। अब तो सोचो खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। लेकिन छुक्की दादी ने कहा मैं ऐसे नहीं लूंगी, पहले आप आकर के प्रदर्शनी देखो, चित्र समझो, उसके बाद फिर मैं लूंगी। वो क्या सोचे कि ये 40,000 रुपए तुरंत ले ले मैं भाग जाऊं, कहीं सूत ब्याज सहित मांग लिया तो मेरे पास है नहीं। तो वो तो सोचता था जल्दी भागने के लिए, और ये कहे जब तक ज्ञान नहीं सुनोगे मैं पैसा नहीं लूंगी। अब मजबूरी उसको आना पड़ा ज्ञान सुनने के लिए। तो जब ज्ञान सुनाने लगी, सुनाते सुनाते जैसे बाबा का चित्र देखा, तो बाबा का चित्र देखते ही ब्रह्मा बाबा का वहां से 10 कदम पीछे भाग गया और बोला ये बुड्ढा कौन है। बोला मैं वही तो बता रही हूं, आप सुनो। परमात्मा ने इसके द्वारा इस विद्यालय की स्थापना की है, इसके द्वारा ज्ञान दिया है, वही मैं आपको सुना रही हूं। बोला इस बुड्ढे ने मेरी नींद हराम कर रखी, रोज सुबह चार बजे कहता है जाओ बच्ची को पैसे दे आओ, जाओ बच्ची को पैसे दे आओ, उसको मेला करना है। अबे देखो ये सत्य घटना है, पास की है। तो आपका कहां क्या हिसाब किताब है आप नहीं जानते हो, लेकिन अगर बाबा के सपूत बच्चे बनो तो बाप आपकी हर आस पूरी करे। कुछ भी ऐसी नहीं जो आस न पूरी करे। अरे कौन सा बाप ऐसा है, लौकिक में भी कोई बाप अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता है। तो ये इतना मीठा बाबा ये भला कैसे बच्चों को दुखी देख सकता, बस सिर्फ हम आज्ञाकारी बन जाए। दुख तो हमारे पाप कर्मों का फल है, पास्ट का फल है जो आया है। भगवान भी उसे खत्म कर सकता है, भगवान के पास पावर है, कर सकता है, लेकिन कुछ विधि है। ऐसे नहीं करे तो सबका कर दे, फिर तो कर्म का महत्व ही खत्म हो जाए। लेकिन ये बाबा कहता बच्चे ये विधि करो तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। उदाहरण के रूप से कहता है मुझे याद करो मैं तुम्हारे पाप भस्म कर दूंगा। अब वो तो जब से ब्राह्मण बने हो यही सुन रहे हो और कई बार मुरली में सुना होगा कि कोई अगर हमें 24 घंटा निरंतर याद कर ले तो वो कर्मातीत हो जाएगा। प्रैक्टिकल कह रहा है 24 घंटा याद कर लो निरंतर तो कर्मातीत हो जाओगे। कितनी बड़ी प्राप्ति दे रहा है, सिर्फ 24 घंटा ही तो कह रहा है, सिर्फ 24 घंटा मुझे याद कर लो कंटिन्यू, आप कर्मातीत हो जाओ। लेकिन हम करते नहीं, विधि बता रहा है इस विधि से ये होगा, विधि हमें करनी पड़ेगी। तो भगवान एक का करोड़ पदम अरब खरब जितना है उतना गुणा मदद दे देगा। दुनिया नहीं दे सकती लेकिन बाबा दे सकता है, अथॉरिटी है, पावर है। लेकिन विधि बता रहा है इस विधि से मिलेगी। हम बच्चे क्या है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, सोचते भगवान हमारा बाप है ना वो करे ना, भगवान के बने तो भगवान करे ना। अरे भगवान कैसे करेगा, पाप किसने किया है, उस पाप को भी तो भगवान को खत्म करना है। इसलिए कहता बच्चे ये विधि अपनाओ तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश करके तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दूंगा। उदाहरण भक्ति में भी देखो, जब सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिया है तब उसके पाप खत्म हुए हैं, तब उसको दो लोक का राज मिला है। बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए ये लक्ष्य ले लो कि मुझे श्रीमत प्रमाण करना ही है। जैसे बताए, एक तो मुरली की एक पॉइंट ले लो, करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है, धारण करना ही है, ले लो। आप देखो, आप एक कदम बढ़ाओ, हजार कदम भगवान के मदद के लिए आते हैं या नहीं आएंगे। मदद देगा बाबा। तो बाप के रूप से आज्ञाकारी बन जाओ, टीचर के रूप से ईमानदार बन जाओ। ईमानदार बनने की विधि है, जहां तक जीना है वहां तक ज्ञान अमृत पीना है। जहां तक जीना है वहां तक ज्ञान अमृत पीना है, रेगुलर एंड पंक्चुअल, रेगुलर भी और पंक्चुअल भी। क्लास में कई ऐसे हैं जो जाते तो हैं क्लास में, लेकिन घर में रिश्तेदार आ गया, ऐसा आ गए तो उनको छोड़ के क्लास में नहीं जा पाते। अब क्या करें, जाना चाहिए या नहीं? मान लो मुरली का क्लास चलता है 6-7 बजे क्लास चलता है, और आपके घर में रिश्तेदार बैठा है, तो क्या करोगे? उसको चाय पानी नाश्ता दोगे या क्लास करने जाओगे? थोड़ा सोच में पड़ गए, क्योंकि सोचते हैं रिश्तेदार को छोड़ा नहीं जा सकता है। मानता हूं आपके घर में ज्ञान में नहीं चलते हैं, रिश्तेदार को छोड़ा नहीं जा सकता है, मानता हूं। लेकिन बाबा ने किसका जवाब पूछा था, मान लो कि जिस समय आपके घर में रिश्तेदार है, आप क्लास में नहीं आ सकते हो, उसी समय अगर आपको कोई कहता यहां से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर आप आना, आपको ऐसे ही 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो आप युक्ति रच लेते या नहीं रच लेते? इसका मतलब हम निकल सकते हैं, लेकिन उस समय हमको भगवान की पढ़ाई उतना वैल्यूएबल नहीं लग रही, उतनी प्राप्ति की महसूसता नहीं हो रही, इसलिए उसको हम कहते। फिर भी हम ये कहते हैं कि आप उस समय नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं है, आप उसके बाद क्लास में जाओ, या आप देखो आपका रिश्तेदार सोया पड़ा है, आप अगर सेंटर पास में है, ज्यादा दूर नहीं, तो जाओ 5 मिनट की हाजिरी देकर आओ, लेकिन अटेंडेंस लगवा करके। ये भगवान के घर में जाना ये बहुत 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 जरूरी है। आप सोचो, भक्ति भक्ति में लोग कोई एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो भी समझते हैं मेरे पाप धुल गए, और आप भगवान के घर में जो सबसे बड़ा तीर्थ है, ये तो महातीर्थ है, मधुबन सेंटर तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, ऐसे तीर्थ पर अगर रोज जाएंगे नहीं तो आपके पाप धुलेंगे कैसे। स्थान धरणी पर जाने से भी पाप धुलते हैं, जैसे आप यहां पहुंचे हो काफी पाप आपके धुल गए, उसकी निशानी है आपके पाप धुल गए, आपका मन हल्का है, आप खुश हैं, शांत हैं, ये पाप धुलने की निशानी है, खुशी आ गई है अंदर से। इसलिए सेंटर पर जाओ जरूर समय अनुसार। अच्छा, अगर लंबा आपके घर में रिश्तेदार रहने वाला है, नहीं निकल सकते हो तो टीचर से बात कर लो किस समय मुरली सुनने जाए, आगे पीछे जाओ। हमें याद है जब अशोक मेहता जिसने गुलजार दादी का ऑपरेशन किया, वो सुबह 4:45 मुरली सुनने आता था, मैं ही मुरली सुनाता था 4:45, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलता, लगन थी। एडजस्ट करो, तो जितना ऐसे बाबा के प्रति, बाबा के श्रीमत के प्रति अपने को जितना आप अर्पित करते जाएंगे, अपने को उस श्रीमत प्रमाण चलाते जाओगे, उतना बाबा आपके ऊपर कुर्बान होता जाएगा, उतना बाबा आपको अपने आप सब कुछ देता जाएगा। लौकिक में भी देखो, ये तो सब माँ बाप ही बैठे हैं यहाँ, कि जो बच्चा आपका कहना माने, आपके श्रीमत प्रमाण चले, आप क्या करोगे, बिना कहे ही सब कुछ उसको देते रहोगे, ये तो लायक बच्चा है, ये पैसा बर्बाद नहीं करेगा, अच्छे रास्ते पर ही लगाएगा, अपने आप देते रहोगे। ऐसे हम लायक बने तो बाबा सब कुछ अपने आप ही देता रहेगा। ऐसे आप सर्व संबंधों के आधार पर आप लायक बनते जाओ, टीचर के रूप से है ईमानदार बनते जाओ। सतगुरु के रूप से क्या है, जहां बिठाओ जहां खिलाओ, जो खिलाओ जैसे सुलाओ, जी बाबा, जी बाबा। और साजन के रूप से तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खेलूं खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, अर्थात मेरा तो एक आप दूसरा ना कोई। ऐसे पांचों रूप से, चारों रूप से आप एक बाप दूसरा न कोई, दिल में पक्का कर लो बाप, बाप की श्रीमत, तो बाबा आपको स्वतः ही सब विघ्न परिस्थितियों से मुक्त करते हुए संपन्न बना देगा। अच्छा, ओम शांति।